मती जाती है। इसलिए के और का पुरुष कहता है मयूर के और वो कहती है का, ध्वनि लग रही है। और कृष्ण को के पास में जब आए निकट आ गए तो देखते ही मेघ समझ करके और नृत्य करने लगे। कृष्ण ने देखा जैसे 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 उस ताल से वो नाच रहे हैं, कृष्ण उसी ताल में बंसी बजाना आरंभ किया। इसलिए हो गया गोविंद वेणु अनु, कृष्ण की बंसी बज रही है पीछे पीछे उसके ताल स्वर से, जैसे मयूर नाच रहे हैं ठीक में मिलाने लग गए। ये दूसरा अर्थ कुछ उपयुक्त अधिक लगता है पहले अर्थ, क्यों मयूरों ने देखा कि हम जैसा नाच रहे हैं और उसी ताल के साथ में पाप के छैया जैसे होता है, ऐसे ये स्वर से ये जैसा हम नाच रहे हैं और उसी स्वर में ये बंसी बजा रहा है, बस प्रसन्न होकर के बाधक को अपना सबसे मूल्यवान चीज उनको अर्पित किया। बंगाल में भी ऐसा होता है कि नहीं, मैं नहीं जानता, इधर हम देखते हैं ये सब नाचते हैं ना, ये राखों में जो नक बने होते हैं या जो कृष्ण बनते हैं, ये सब जब सुंदर से गान किया या नाचा तो लोग 2 रुपए की नोट निकाला, 5 रुपए की, 10 रुपए की, 1 रुपए की और खड़े होकर के ऐसे कर करके और दे दिया। नेव थावर जिसको कर कोई बजाने वाला भी सुंदर बजा रहा है तो उसको न्यौछावर कर सकते। मयूर ने कहा कि देखिए इतना आपने सुंदर वाद्य किया है और हमारे नाचने में आपने सहायता की, आपकी बंसी की ध्वनि नहीं तो हम तो नाच नहीं सकते, इसलिए हम प्रसन्न हो गए और हम आपको इसके अतिरिक्त हम क्या, हमारे पास यही है सब, हमारा यही है, इसमें आपके प्रेयसी के आंखों को हमने लगा रखा है, राधा जी की आंख, और इसमें इतने सुंदर रंग है, मन संग सृष्टिकर्ता ने उसमें भर दिए हैं, ऐसे चीज को हम उपहार दे रहे हैं। कृष्ण ने उसे मट्टी से उठा दिया, उठा करके एवं कह करके शेष दिया। अब हम एक दिन नहीं, अब जीवन भर भी इस चीज को कभी नहीं उतारेंगे, बस लेकर के सदा के लिए इसको मानो रख लिया। इस दृश्य को लोगों ने देखा, क्या देखा, कृष्ण की बंसी धरी और मोरों का नाचना। मोर अब केका केका बोलना भूल गए, पक्षी कलरव कर रहे थे वहां गोवर्धन के पर्वतों के शानु देश में। शानु देश कहते हैं पर्वत के ऊपर में ही, किंतु समतल भूमि हो तो उसको शानु देश कहते हैं। वो शानु देश में बैठे हुए पहाड़ों के ऊपर में, पर्वतों के ऊपर में, उसके वृक्षों के ऊपर में, कदम्ब और समाल के वृक्षों में बैठे हुए और देख रहे। पहले तो चाह रहे किंतु बंसी की ध्वनि देखा और कृष्ण का मुखारविंद देखा और मोरनों का नाचना देखा, अब वो बोलना चाहना कोयल उकना भूल गई, सुख पक्षी ये सब बोलना भूल गए, सब कुछ भूल गए। जैसे हरि कथा हो रही है सभी लोग भूल जाते हैं अपना बोलना, उनका यह भाव और प्रेम लेकर के सभी लोग विस्मित हो गए और वो देख रहे हैं। परीक्षादिशान अवसानी समस्त सत्व, जितने भी सत्व पशु पक्षी इत्यादि सभी बंदर सब शोर मचाते हैं, इधर उधर लंप देते हैं, वो अपना भूल गए सब चुपचाप ऐसे होकर के, जैसे मानो सिद्धांति महाराज, पूज्यपाद सिद्धांति महाराज के मंदिर के ऊपर में ना दिया कान कोई पकड़ करके ऐसा चुपचाप बैठे, ऐसे बंदर हो जैसे बंदर एकदम पूरे रूप में बैठे, पशु पक्षी इत्यादि बोलना चलना चलना फिरना सब कुछ। इसके 3 कारण, कृष्ण का मुखारविंद या उनके सियंगों का दर्शन और उनसे बंसी की ध्वनि और मोरों का इतना सुंदर रूप से नृत्य देखकर गई थी वृंदावन के वर्णन करने के लिए, यही असल लग्न उनका कहते हैं, गई थी कृष्ण का वर्णन करने, कृष्ण को छोड़ दिया, कृष्ण के बंसी को छोड़ दिया, अब उनके कृष्ण से स्पष्ट है कि वृंदावन भूमि की तो वृंदावनी की भूमि का वर्णन करते जा करके और वर्णन करने लगी मयूरों का। इसलिए उनका विक्षिप्त मनसो, इनका विक्षिप्त चित्त है ना, कोई ठीक नहीं है कब कैसे कब, जहां थोड़ा सा संबंध मिला बस उस चीज को छोड़ करके उस पर उस डालते उस पर विक्षिप्त मनुष्य है। प्रेक्षा त्रिशान अवतानी समस्त सत्सम समस्त सत्य ओह का जीवन बेकार वृथा गया बेकार गया। कैसे गया? ये मोर लोग कितने स्वाधीनता से स्वच्छता से नृत्य कर रहे हैं, बंदरों को भी सौभाग्य मिला, वहां के घासों को सौभाग्य मिला, पेड़ों को मिला, पर्वत को मिला, ये सौभाग्य हम लोग को मिला। ये हमारे चेतनिया नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं पशु पाखी झुरे पाखान विदरे सुनी जार भूमि गात। महाप्रभु जी के लिए कह रहे हैं, महाप्रभु जी की गुण गाथाओं को सुन करके, उनकी महाबदान्यता को सुन करके, उनकी कृपा की ये विशालता देख करके, सब पर उन्होंने कृपा किया। उच्च संकीर्तन काते करिला प्रचार फिर चार जीवेर खंडाई रचिता। फिर कहते हैं जैसे एक समय से जहां जन्म हो लो ना साधन ये सब कारण हम लोगों को, हम लोग भजन किसको कहते हैं? हमने मन से जन्म लिया, गुरु कारण भी हमारा हुआ, कुछ शास्त्र भी सुना और कृष्ण के भजन के लिए गुरु की सेवा के लिए तनिक भी विरह वेदना नहीं है, भगवान के लिए तनिक भी हाय है हमारा भजन नहीं हुआ, अनर्थ में सारा जीवन चला गया। भक्ति विनोद ठाकुर जैसे महामुक्त पुरुष कृष्ण के परिकर कह रहे हैं वृद्ध काल आओ सब सुख भाग पीड़ा बचे हई दूता कर सर्वेन्द्रिय दुर्बल तीन कलेवर होगा भावे दुखी समय। वो कह रहे हैं हम लोगों की शिक्षा के, हम लोगों को इसके लिए तनिक भी दुख कर कुछ भी हम लोग क्रोध इत्यादि काम दोष लेस ये सब कुछ भी नहीं होता तो भगवान का भजन कैसे होगा? इन सब विषयों में कहां हम प्रतीत करेंगे? ये हम लोग भी वो कहते हैं ना पालन को सुखद इत्यादि सब छोड़ करके कब हम दिन रात इसी की चिंता में रहें? कब है गौर बने सूरज ध्वनि कटे आराधे हार कृष्ण बोले ये सब भाव हम लोगों को कब होगा? यदि दिन रात हम अपने अभाव के संकोच में भी दर्दी लगे रहे ये हमको क्या अभाव है दुख क्या इसी के दूर करने में रह गए सारा जीवन और इसके लिए चिंता करने का अवकाश नहीं हुआ ना ना इगुली हमारे पढ़ते नहीं सब दसम स्कंद कौन खबरदार छो कौन कृष्ण लीला चलते सुन महाप्रभु रे सब बोले लीला तो सुनेगा कैसे दिन रात तो उसी में गदगद कर। इसलिए हम लोगों का कब ऐसा सौभाग्य होगा जो सबको छोड़ करके दिन रात इन्हीं की चिंताओं में निमग्न होकर के गुरु वैष्णव का अनुभूति पूर्ण करते हुए हम लोग इसमें लगे। धन्यास्मूढ़मतयो हरिण्येता जानन्दनन्दनमुपास्तमितित्रवेशम् आकर्णवेणुरणितं सह कृष्णसारा पूजां दधौ विरचितां प्रणयावदोकै। धन्यास्मूढ़मतयो, अरे हम लोगों की बात मूढ़मतयो अत्यंत जो मूढ़ है जिनको कैसे मैं मर जाऊंगी कैसे मेरी रक्षा हो इसकी चिंता नहीं है, व्यासों की एक बंसी की तान पर भूल जाती है जो हिरणे और एक लकड़ी पर भार दे करके बस अपना भार देखते हैं गिर जाती है और पहली आकर उसे मार कर कोई भी ज्ञान इनको नहीं है ऐसे ये मूढ़ जो हिरणिया हैं नंदनंदनम उपास्य विचित्र वेण। अरे हम बुद्धिमती होकर के क्या हो गया, हम बड़े बुद्धिमान हैं, हमसे अधिक कौन चिंता करने वाला है, अच्छा बुरा हम अपना सब समझते हैं, तो ये क्या हो गया तुम्हारा। उसे तो वो मूढ़ जो है निर्णय वो लाखों कोटि धन्य है, एक दो बार नहीं, उसी को कह रहे हैं नंदनंदन उपास्य विचित्र वेण। उनका चित्र विचित्र, विचित्र बने क्या, चित्र बड़ा सुंदर होता है, उससे भी विशेष रूप से चित्र, चित्र को संपूर्ण रूप से आकर्षण करने वाला, उसको कहते हैं विचित्र। नंदनंदन के विचित्र वेश को देख करके और आकर्ण वेणु रणितम, कृष्ण के वेणु को सुनकर सह कृष्ण सारा अकेले नहीं, उनके पतियों को साथ में पीछे पीछे लिए हुए और कृष्ण को आकर के देखने लगती हैं और कानों से वंचित धन का पान करने पूजांग कृष्ण के लिए पूजा अर्पित करते हैं और कृष्ण क्या करते हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं, बड़े प्रेम के साथ उनकी दी हुई पूजा को ग्रहण करते हैं। इसलिए यदि हम मर जाती तो भजन के रूप में आती, गई थी हिरणों को, हिरणों से कृष्ण का संपर्क है, अब चली गई कहां पर, कृष्ण सारों पर, कृष्ण सार माने हिरणों के ऊपर, क्यों, कृष्ण सार माने के पति हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, अरे कृष्ण की सेवा करेगी, इसी जगत में वही धन्य है जिनका पुत्र अथवा जिनका पति कृष्ण का भजन करता है और उसके लिए सहायक होता है। जिनका पति कृष्ण भजन के पतिकूल है उससे तो अच्छा है कि विवाह ही नहीं। यहां पर गई थी हिरणियों के लिए संपर्क में बोलने और बोलने जाकर के कहां चली गई, विक्षिप्त चित्त होकर के कृष्ण सार हिरणों के ऊपर, ओह उन्होंने कृष्ण को सार बना रखा है ना, इसलिए अपनी पत्नियों को कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं है, कोई क्या कह लेगा तुम्हारा, कहेगा तो हमी को तो तुमको रखना है, हम तुमको छोड़ नहीं सकते, चलो आगे चलो हम पीछे चल रहे, तुम कृष्ण को यथेष्ट के रूप में तुम बन, हम लोगों के ये सब कुटिल पति यदि सुन लिया कभी ये कृष्ण को यदि बहुत दूर से देखा तो हमारे प्रति क्रोध करते हैं, घर से निकालने की चेष्टा करते हैं, मारने की, घर में बंद करते हैं, ये सब चेष्टा करते हैं, इसलिए का क्या अच्छा होता, ये हम ही हिरणी होते और हमारे पति ये हिरणी सार होते, सार मृत कृष्ण सार हरिण होते और हम उनके पीछे पीछे वो आगे आगे हम चलते पीछे पीछे आ सकते और कृष्ण का हम दर्शन करते, ये लालसा इसकी व्याख्या हम लोग कल करेंगे, आज यही सब पंचा कर हम लोग यही देखें, इस जन्म में एक समय एक मिनट भी बर्बाद न हो, विशेष करके चिंता करना, कृष्ण की लीला कथाओं में, वैष्णव के लीला क्षेत्र में, विशेष करके वृंदावन से महाप्रभु जी के तरफ में, महाप्रभु जी के लीलाओं और उनके अवधानों के तरफ में विचार करें और वहां गौधाम में रह करके क्या करेंगे, गौ प्रेम में यदि डूबेंगे तो ऊपर आएंगे कहां, वृंदावन, इसलिए हम लोग अभी अनर्थ ग्रस्त है, महाप्रभु जी की कृपा करते को ग्रहण करते हुए उस लीला में डूबे, डूब करके हम लोगों को कभी किसी दिन वृंदावन में अधिकार मिल जाए, यही प्रार्थना हम
गुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरस्तिते। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देव प्रणमामि हरि हा देवी काकु हरकद गदयाद्यवाचा जाकेनि पत्त भूवि दंडवत उद्भटारती अस्या प्रसादम बुधस्य जनस्य कृत्वा गंधर्वी केतव गणे गणनंदिते अंग श्यामलिम सताभिरभितो मंदे कृसेंदे वरम जड्डं जागुदरोचि सांगि दधतम पट्टम्बरस्य श्रिया बृंदारण्य निवासिनम हृदि लसद्वामाभिरामोदरम राधा स्कंद निवेशितो जलभुजम ध्यायेन दामोदरम भक्त्या विहीना परा दलस्य चित्त्वा सुकामादि तरंग मध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणारविन्द गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मानुतोऽस्मि वदामि राधाम् भजामि राधाम् भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधाम् मधुरस्मिताभ्यां वदामि राधाम् करुणाभरभ्रं मन्नास्ति गतिर्न कापि बृहद भगवतामृत का बृहद भगवतामृत का पाठ चल रहा है। इसमें गोप कुमार द्वारका पहुंच गए हैं और उनसे उद्धव जी से और गोप कुमार ने वार्तालाप चल रही है। प्रसंग था गोप कुमार को कहीं भी आत्मसंतोष तृप्ति नहीं हुई। द्वारका में पहुंच गए, कृष्ण को पा भी लिया और कभी कभी वो बंसी भी बजाते हैं, गोचारण भी करते हैं, वृंदावन की लीला को भी दिखला देते हैं, तो भी इनको विरह लगा हुआ है और इनको संतोष ही नहीं होता। तो वही नारद जी कह रहे हैं, इसको क्यों नहीं संतोष होता, कैसी दुर्लभ वस्तु इसको मिल गई, अब बाकी कह रहा है इसको, और उसी में चल रही है। जो कृष्ण रस का वृंदावन रस का रसिक है उनको कभी भी द्वारका तक में भी कहीं भी आत्मसंतोष नहीं होगा, तृप्ति नहीं होगी, ये संभव पर नहीं। इसी को बतलाते हुए नारद जी ब्रज की कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उनको प्रणाम करने लगे, एक एक लीला को जन्म लीला से आरंभ करके सब लीलाओं को प्रणाम सूत्र में कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी ने इसी के ऊपर में दशम स्कंद की लीलाओं के प्रणाम के रूप में 108 मालाएं गुथी है, कृष्ण लीला सब इन्हीं लीलाओं के ऊपर। तो वही हम लोग चलते 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 मथुरा तक हम लोग कृष्ण के गोचारण दावालन पान इत्यादि तक पहुंचे यहां पर आकर के हम लोग 21वें अध्याय की लीलाओं में हम लोग पहुंचे। नारद जी गोपियों के बंसी गीत को प्रणाम कर रहे हैं। तो उसी प्रसंग में हम लोग यहाँ तक पहुंच करके थोड़ा सोचा कि इस पर एक विहंगम दृष्टि डाली जाए, ये बंसी गीत है क्या आखिर, इसको बंसी गीत कहते हैं। तो थोड़ा सा यद्यपि हम लोगों का अधिकार नहीं है, हम जानते हैं श्रोताओं में जो बैठे हैं इनमें प्राय जैसे कल कहा था ना वो सब मुनयो, तो ऐसे इन लोगों में भी कुछ अधिकारी हैं। किंतु मैं और अधिकांश श्रोता लोग, हम लोगों का अधिकार नहीं है, अधिकारी है ही नहीं है, ऐसा कहना अपराध हो जाएगा। जिनको लोग नहीं अधिकार है किंतु मुफ्त में है, कम है, वो लोग हम लोगों के प्रणम में है। तभी इस लीला में क्या चीज है इसको दिखलाने के लिए हम लोगों ने थोड़े से संक्षेप रूप में विहंगम दृष्टि से इस पर दृष्टिपात अनुशीलन कर रहे हैं। कल तक हमने प्रारंभ में कुछ गोस्वामियों की शिक्षा, जो हम कैसे इसमें प्रवेश करें, उसमें हम लोगों ने कुछ विचार किया अनर्थ दूर होने के लिए। बिना अनर्थ दूर हुए जो लोभ जैसा दिखता है वो लोभ नहीं बल्कि उत्पात है ना? वो लोभ नहीं है, वो है उत्पात। और जब अनर्थ निवृत्ति के बाद में जब आत्मा की वृत्ति कुछ उसमें से प्रकाशित होने लगे तब ऐसा समझा जाएगा जी हाँ उसको कुछ अब लोभ हुआ है। तो लोभ के भी बहुत से उसके दृष्टांत हैं, ये इसको लोभ हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके पहले एक और चीज हम लोग विचार करते हैं, जिसको ऐसी कथाओं में लोभ हुई है उसको हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी उसे बतला रहे हैं कि उनको कैसे साधन करना चाहिए। उसमें वो बतला रहे हैं जिन लोगों को ये लोभ हुआ है ब्रज की भक्ति के प्रति किसी भी रस में, वो तो बड़े भारी सौभाग्य है, दुर्लभ है जगत में, कोटि कोटि में से कोई विरले हैं ऐसे जिनको लोभ हुआ। अब उन लोगों के लिए जिसको लोभ हो गया साधन न करें, भले ही लोभमयी श्रद्धा हो अथवा शास्त्र शासनमयी श्रद्धा हो, उत्पन्न होने पर भी यदि उपयुक्त हम साधन नहीं करेंगे तो वो बिरवा सूख जाएगा, अंकुर अंकुर भी सूख जाएगा। नहीं? पानी यदि न मिले, हवा न मिले या कोई चर जाए उसको, तीनों अवस्थाओं में ही वो नष्ट हो जाएगा। पानी का नहीं मिलना, सिकना और हवा का नहीं मिलना, ये साधन है। श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, और अपराध जो है वो क्या है, उखाड़ देना, चर जाना एकदम समूल से ही। तीनों स्थितियों में ही वो वृत्ति जो बड़े सौभाग्य से उत्पन्न हुई थी वो नष्ट हो गई। अब यदि वो अंकुर हुआ लोभ भाई श्रद्धा वाला, तो उसके लिए श्रवण और कीर्तन आवश्यक है। क्या श्रवण करेगा, यही सब कथाएं, ये सब कथाएं नहीं सुनने से उसके लिए श्रवण के लिए पानी और सीखने के लिए श्रवण कीर्तन ये सब होना चाहिए। इसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बतलाए हैं ये साधन पांच प्रकार के होते हैं ने? पांच प्रकार के वो होते हैं, निज अभीष्ट भावमयी ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साधन करने वालों के लिए, जिनको साधन में प्रवेश होना है। और साधारण आदमी है तो वो क्या ने भैंस बैठ पगुरावे भैंस के आगे दीन बजावे और भैंस बैठ पगुलाती है, ऐसे हम लोगों की दशा। दीन माने वीणा बजाते हैं और भैंस क्या करेगी, बैठ करके पागुर मारेगी। तो जिनको इसमें लोभ हो गया एक मिनट का समय वो बर्बाद नहीं करेंगे। वो भाव भक्ति का है ना, शांति अव्यर्थ काल। तो पहला है भावमयी, दूसरा है भाव निज अभिष्ट भाव संबंधी, तीसरा है अपने अभिष्ट संबंधी भावों के अनुकूल, और एक है भावों के अविरुद्ध जितने बातें हैं वो, और एक है दिल भाव के दिल। इन पांच के प्रति हमारा कर्तव्य है। निज भावमय किसको कहा जाता है, जिसको किसी विशेष रागात्मिका प्रति, रागात्मिका व्यक्तियों के प्रति उनकी सेवा वासना को देखकर ऐसी सेवा वासना मेरी भी होती, चारों रोसम से कोई एक भाव के प्रति, वो हो गया अभिष्ट भावमय। वो भाव है हृदय में, ये यही भाव स्थाई भाव के रूप में लेता है कुछ दिनों के बाद, एक जन्म, दस जन्म, बीस जन्म के बाद में, किंतु ये जरूर रहेगा, यही मुख्य चीज है। ये साध्य और साधन दोनों है, पहली स्थिति में साधन और दूसरी स्थिति में साधन। और ये चार प्रकार के भाव हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य और भक्ति। इसको यदि किसी को ऐसा लोभ हो गया है तो हीरा जवाहरात और मणियों की अपेक्षा कोटि गुण अधिक इसको भीतर में संजो करके रखना पड़ेगा, कहीं हवा न लग जाए, नहीं तो कर्पूर की भांति उड़ जाएगी ये भावना। और उसको मने मने निज सिद्ध करिया भावन रात्रि दिने सेवे राधा कृष्ण रचा, ये चीज है, इसको कहते हैं भावमयी। दूसरा होता है भाव संबंधी, भाव संबंधी मैंने, भाव संबंधी मैंने होता है जो उपादान कारण है इसका, उस भक्ति का, भावमयी भक्ति का उपादान कारण है। उपादान कारण क्या है, ऐसी ऐसी लीला कथाओं का श्रवण, ऐसे ऐसे रसिक भक्तों का संग, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, आदिश्रवण, ये मैंने सभी विशेष करके साधु संग नाम के संभागवत श्रवण, मथुरा वासी मुत्तिर श्रद्धा, ये सब उस भक्ति के उपादान कारण है। इसलिए ये उपादान कारण अभी दिखते हैं, किंतु यही उपादान कारण फिर भावमयी में बदल जाएगा। जैसे श्रवण कीर्तन करते हैं अभी उपादान कारण है उसको उत्पन्न करने के लिए, किंतु यही श्रवण कीर्तन ही जब भावमयी हो जाएगी तब फिर यही वो सिद्ध भाव हो जाएगा। अपने भावों के अनुकूल ये संबंधी जो भाव है, अपने अपने भावों के अनुकूल जो साधन है वही साधन होगा तब तो ये भाव संबंधी होगा। जैसे गुरुकरण, गुरुकरण करने के बाद में दीक्षा और शिक्षा, दिसंभ्रेण गुरु सेवा, ये दस अंग पहले के, और इसके बाद में श्री धाम में रहना इत्यादि जितने भी भक्ति के अंग हैं वो इसके लिए अनुकूल हो उनमें से उनको ले ले, प्रतिकूल वाना न ले। तो ये सब हो गया उपादान कारण। और भक्ति के अनुकूल जो हैं भाव, जिनको निमित्त कारण कहते हैं, डायरेक्ट भक्ति नहीं, किंतु उसके बिना भक्ति हो ही नहीं सकती है ना। जैसे एकादशी जन्माष्टमी कार्तिक इनका हम पालन करेंगे। वैदिक भक्ति के लिए ये तो वैदिक भक्ति के अंग हैं, किंतु श्रवण कीर्तन यदि कार्तिक महीने में जन्माष्टमी के समय में और एकादशी में यदि राधा कृष्ण के ऐसे ही भाव संबंधी दशम स्कंध वाली लीला चरित इत्यादि का वर्णन और श्रवण इत्यादि होता है तो यही उपादान कारण बन जाएंगे ना? और जब इसलिए करते हैं कि हमको करना चाहिए, शास्त्र ऐसा कहते हैं, तब तक ये वैदिक भक्ति बन जाएगी ना? अंग वही है, किंतु भावना के अनुरूप में उसके भाव बदल जाने से वहां पर वैदिक भक्ति का अंग होने से ये निमित्त कारण हुआ ना? और जबकि वो भावमयी भक्ति के अंतर्गत में वो होकर के वैसे उसके अनुकूल हो जाता है, वो उपादान कारण हो जाए। है कठिन किंतु समझने की चेष्टा कर तो भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा भक्ति ऐसी सहज नहीं है जो झट प्रवेश कर दिया। ये रसगुल्ला नहीं है, मथुरा का पेड़ा नहीं, बस लिया खरीदा और बस मुख में दे दिया। समझना पड़ेगा खूब अच्छी तरह से, दिन रात एक करना पड़ेगा। यदि इन चीजों को जो बतला रहे हैं संक्षेप में हम बतला रहे हैं, किंतु यदि समझने की चेष्टा की जाए, नहीं समझ में आया फिर समझेंगे और इस काम में हम लग जाएंगे। प्राण जाय बरु वचन में जाय, संकल्प से हम चित नहीं, डू आर डाई, करो या मरो, ऐसा जब हो जाएगा तो क्यों नहीं भक्ति होगी। यशोदा जी का परिश्रम दे करके कृष्ण का चित्त द्रवित क्यों नहीं होगा, तब फिर कृपया वंदने हो जाएंगे, तब ये भी संभव हो जाएगा। जब हम लोग इतना बढ़े हैं आए हैं तो दोंगी तो और बढ़ जाएंगे, इसलिए हमेशा उत्साह के साथ में चलना चाहिए। उत्साह निश्चय धैर्य और तीसरा है चौथा अच्छा एकादशी कार्तिक जन्माष्टमी ये बतलाया, तुलसी की माला गले में देना, इससे क्या होता है? लकड़ी बांध लेने से नहीं, तुलसी की माला गोपी चंदन धारण शरीरों में कृष्ण नाम राधा नाम इत्यादि का अंकन, तुलसी सेवा तुलसी की परिक्रमा तुलसी को दीप इत्यादि देना, मंदिर की परिक्रमा वृंदावन में आना जाना उनकी परिक्रमा करना गोवर्धन की परिक्रमा करना, ये सब अभिनिमित्त कारण है, किंतु भाव बदलते हैं ये भी उपादान कारण के रूप में चले जाएंगे। अच्छा अब तीसरा है चौथा है भाव के अविरुद्ध क्रियाएं कुछ ऐसी हैं, अपना भाव तो नहीं है किंतु विरुद्ध भी नहीं है, जैसे लिखा है 64 अंगों में गो विप्र तुलसी अश्वत्थ ब्राह्मण पीपल इनकी सेवा। मान लिया कि हमारे ये भाव के विरुद्ध नहीं है, पीपल का पेड़ आया तो उसको प्रणाम कर लिया तो हमारा हर्ज क्या है? वृंदावन का ब्रजवासी कोई है, ब्राह्मण है, एकांतिक भक्त नहीं है, हम लोगों का गौड़ीय वैष्णव के विचार जैसा होना चाहिए ना, राधा पक्षीय, ये सब एकांतिक पर की अभाव युक्त जो भगवान का भजन है उसमें वो नहीं है। वो सभी भावों को राधा वल्लभ जी है ठीक है, बिहारी जी भी ठीक है, मदन मोहन जी भी ठीक है, वो भी ठीक है, गोपेश्वर महादेव जी की हानि चले जाते हैं और सब देवदशा देवी सब और दान दक्षिणा में भी चले जाते हैं, वो यज्ञ भी करा देते हैं, साध इत्यादि भी ले लेते हैं, दान भी ले लेते हैं, किंतु कुछ पढ़े लिखे हैं वृंदावन में रहते हैं, एक साधारण प्रसिद्ध वृंदावन का मैं ब्रजवासी ये भाव, तो ऐसे ब्राह्मण को यदि हमने प्रणाम कर दिया तो इसमें हर्ज क्या है? ये अविरुद्ध भाव वाले कोई लाभ भी नहीं है, कुछ हानि भी नहीं है, कुछ तटस्थ जैसा है, तो भी हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी बतलाया है। क्या बतलाया? गुरव गोष्ठे गोष्ठालेषु सुजने भूसुरगणे स्वमंत्रे नामनी ब्रज वंदी सरणे इत्यादि में कहा है ना, तो उनको सम्मान देना चाहिए ब्राह्मण लोगों को, उसे संतुष्ट हो जाते हैं। क्या हर्ज है, रहते तो है वृंदावन में, भले ये कांतिक रूप से नहीं होकर के रामचंद्र जी की आराधना करते हैं, तो क्या हर्ज है, हमारे कृष्ण का ही तो वैभव है, उन्हीं का तो प्रकाश है। राम कोई कृष्ण से अलग थोड़े हैं, हमारे कृष्ण की एक वो भी लीला है, इसलिए उन लोगों को भी प्रणाम इत्यादि का। और वैष्णवों की सेवा, वैष्णवों की सेवा ये भी इसी के अंतर्गत लेते हैं, किंतु कहते हैं कि वैष्णवों की सेवा इसमें लेने पर भी इसको अंदर में मत लो। ले लिया हमने कैटेगरी में विभाग करने के लिए ले लिया है, किंतु इसको ऐसे समझो कृष्ण की बंसी और कृष्ण दोनों हैं। गोपियों को या यशोदा मैया को किसके प्रति प्यार अधिक होता है, कृष्ण के प्रति ना बंसी के प्रति? यदि किसी का बंसी के प्रति आदर न रह करके कृष्ण के प्रति आदर हो तो इसमें कुछ गड़बड़ी होने की संभावना है। इसलिए कृष्ण से भी कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के प्रति ब्रजवासी भाव वाले लोगों के लिए अधिक भाव होता है। कृष्ण दधी मक्खन खाएंगे और उसी को उन्होंने हनिया को उलाट दिया और दूध दही बह गई, बह गया दही। यशोदा जी आई, क्या किया तूने? बड़ा भारी दुष्ट हो गया, बस कान मरोड़ दिया, ऐ करने लग गए। अरे यशोदे तू कैसी है, तुम्हारा दूध प्यारा है कृष्ण प्यारे हैं? यशोदा जी इसका उत्तर नहीं देंगी, रोज से देखेंगे हैं? ये रोज जो धनिया तोड़ता है, दही फैला देता है, बस इतना ही कहेंगे, जवाब नहीं देंगे। किंतु वैष्णव लोग इसका उत्तर देंगे, ये कृष्ण से भी अधिक कृष्ण की प्यारी वस्तुओं के प्रति। एक महिला है अपने बच्चे को लेकर के आई, महिला का आदर सम्मान मत करो और उसके बच्चे को मिठाई उठाई दे करके जरा प्यार करके चुम्बन कर दो, वो अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। और लड़के को दुत्कार दो, उनको खूब सिंहासन पर बैठा हो, उनको अच्छा लगेगा। इसलिए कृष्ण से भी कृष्ण के जो प्रियजन हैं, वैष्णव लोग हैं, कहते हैं ना कृष्ण हमारे प्राण वही हैं और उनका प्राण मैं हूं, ऐसे वैष्णवों की सेवा कृष्ण की सेवा से भी अधिक समझ करके करो, यदि ऐसे भक्ति को चाहता है। और पांचवी चीज है, जो वृद्ध चीजें हैं उनको प्रत्याग करो। क्या चीज? अहम रहो उपासना। मैं ललिता हूँ, मैं विशाखा हूँ, मैं यशोदा हूँ, मैं रूपमंजरी हूँ, ये सब भाव एकदम दूर करो। ये भाव कभी भी नहीं आने पाए, अंग हो उपासना या इसके समान और चीजें। और द्वारका में पृथ्वी का रहना, यहाँ से छोड़कर के बीच में द्वारका जाते हैं, और रुक्मिणी इत्यादि का भी अर्चन पूजन करते हैं। राम सीता को भी रख लिया, राधा कृष्ण को भी रख लिया, रुक्मिणी और सत्यभामा और कृष्ण को भी रख लिया और सबकी पूजा करते हैं। बाल गोपाल को भी रख लिया और राधा कृष्ण को भी रख लिया और कृष्ण बलदेव को भी रख लिया, ये क्या होगा? भाव वृद्ध हो जाएगा सर, वो भक्ति गड़बड़ हो जाएगी, किसी में सिद्धि नहीं होगी। इसलिए ऐश्वर्य और माधुर्य एक जगह रहने पर भी स्पष्ट रूप में प्रकट रूप में एक जगह नहीं रहेगा, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऐसे विरुद्ध जो चीजें हैं इनको दूर रखना पड़ेगा, जो अपने भावों के अनुकूल हो बस ऐसा ही साधन करना पड़ेगा। इस प्रकार से पांचों को समझ करके अनुकूल को ग्रहण, प्रतिकूल को वर्जन और जो भावमयी है उसको स्थायी भाव लाने की चेष्टा और भाव संबंधी है उसको भी भावमयी में परिवर्तन कर दिया और निमित्त को भी उपादान कारण में प्रवर्तित कर दिया है, तब तो बस भक्ति एक जन्म का कुछ समय में ही ये हो सकती है। जैसे कि श्रीमद् भागवत ने आश्वासन दिया है, श्रवण मात्र से ही कृष्ण तत्क्षण अवरुद्ध हृदय में हो जाते हैं, अवरुद्ध से तत्र कृतिभि सुकृति तत्क्षणात्। तत्क्षणात् माने अखंड काल में जो दो चार दस बीस जन्मों में भी हो जाए, हम तो समझते हैं कि हम लोगों के लिए कोई गारंटी दे एक लाख जन्म में आपका हो जाएगा, बड़े आनंद और आशा की बात है। तो इन्हीं भावनाओं को लेकर के हम लोगों को भजन करना चाहिए, भाई भजन करेंगे तब तो हमारा मनोरथ सिद्ध होगा। और इन सब हमारे गोस्वामी को विचारों को नहीं लेंगे, तनिक भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो खुरस्य धारा दुर्गम खुरे की धार के तरफ में कहीं इधर चला गया, पैर कट जाएगा, बस जख्मी हो जाएंगे, बस खत्म हो जाएगा। खूब सावधानी के साथ में वैष्णवों का कहीं अपमान, कहीं कुछ अपराध ये सब न हो जाए। वैष्णव लोग बड़े दयालु होते हैं, अपराध तो लेते नहीं है, किंतु उनकी चरण की धूलियां जो है ना, चेले चपाती हैं, वो बड़े दुरंत हैं, उनसे बच करके निकलना बड़ा भारी कठिन है। महाप्रभु से निकल जाएंगे, किंतु स्वरूप दामोदर राय रामानंद और उनके नीचे जगदानंद पंडित जी और दामोदर पंडित जी कौन एक है ना, जो महाप्रभु जी को भी दस बातें सुना देते हैं, इन लोगों से निकल करके पार पाना बड़ा भारी कठिन है। इसलिए सबको विचार करके हम लोग चलेंगे और भजन करने की चेष्टा करेंगे, तब फिर हम लोग इस रागात्मिका भक्ति के अनुगमन में रागात्मिका भक्ति के प्रति कुछ लोभमयी भावना हो सकती। कल तक हमने प्रायो बतंग विहगा मुनियो वनस्मिन कृष्णे चितं तदितं कलवेन गीतं आरुचिते द्रुम भुजान रुचिर प्रमाणन श्रीमंत मिलितो। ओ इस वन के जितने भी पक्षी हैं, ये पक्षी नहीं है, मानो ये ऋषि ही हैं, मुनि हैं। कल हमने इस चीज को बतलाया, मुनि में भी विभाग किया। दो दो एक बातें हम इस वक्त करके आगे चलेंगे। मुनि भी तीन प्रकार के होते हैं, ब्रह्म चिंताशील मुनि, मन के द्वारा ब्रह्म की चिंता कर, मारा चेक तो असंभव, मर भर ठीक नहीं है, चिंतन करने वाले, ब्रह्म की चिंतन करने वाले मननशील मुनि, परमात्मा जो अपने हृदय में अंगुष्ठ परिमाण जो हमारे साक्षी हैं, कर्म फलों के नियंता है, इनका जो चिंतन करते हैं सब समय और वही हो जाने की चेष्टा करते हैं, वो परमात्मा अनुशीलनकारी मुनि। और तीसरे होते हैं भगवत नाम रूप गुण लीला चिंतन करने वाले मुनि। इनमें से जो दो हैं, वो दो में कुछ ऐसे हैं जो वेद रूपी तरु है और उसकी जो हजारों शाखाएं लाखों शाखाएं हैं, उनमें कर्म मार्ग वाली जो शाखा है उसको वो छोड़ देते हैं, उनको फलों को भी छोड़ देते हैं, सेमल का फूल और पलाश का फूल और जो वो फल किस चीज का बदला माका, ऐसे के प्रति ये सब कुछ चीजें हैं, वैसे ये कर्म फल इसको तो छोड़ दिया है, किंतु परमात्मा और ब्रह्म संबंधी अड्डालों पर ये झूल रहे थे। किंतु ये वृंदावन वाले जो मुनि हैं, ये इसको भी छोड़ चुके हैं, इसमें से वो डाल जो भगवत अर्पित कर्म की है उसमें से जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा सा अंगीकार करते हैं रुचिर प्रवालन, जो छोटे छोटे कपोलों अभी उगे हैं, अंकुर उगे हैं, बस उसी को भगवत अर्पित समझ करके जीवन निर्वाह के लिए कभी देखते हैं, और किसी के तरफ में मिलिता चक्षु आंखों को बंद कर दिया है, देखते ही नहीं है कहीं, न मन से, न आत्मा से, न शरीर से, न आंख से, न कान से, न किसी भी इंद्रिय से। विगतान्य वाच, विगत अन्य वाच, वाच माने यहां पर समस्त इंद्रियों की समस्त क्रियाएं, उससे वे विगत हो गए। केवल कृष्णामरूप गुण लीला चिंतन में ही ये ध्यानस्थ है। ध्यानस्थ तो है इसलिए इनको मुनि कह रहे हैं, और प्राय शब्द का प्रयोग किया था इसलिए कि जो नत भक्त है वो क्या करेंगे, वो कृष्ण नाम सुनते ही आनंद से नित्य करने लगेंगे और गान करने लगेंगे कृष्ण नाम रूप का, और उसमें आत्मविभोर हो जाएगी। तो वृंदावन के जो संत लोग हैं वो कैसे हैं, श्रवण कीर्तन और स्मरण पारायण है, ये स्मरण कम है, ये स्मरण पंथी वालों के लिए मुनि कहा गया है, इसको सेकंड नंबर में लाया। और श्रवण कीर्तन जो करने वाले हैं उनको लगाया मोर, सूप, सारिका, इन समय कोयल, इनमें लाया, और इनको लगाया किसमें, जो स्मरण पंथी को अधिक मानते हैं स्मरण भाव से, उसको प्रधान करके श्रवण और कीर्तन को दूसरे नंबर पर करते हैं, उनको वो मुनियों की लिया। वृंदावन में ये दोनों प्रकार के हैं, हमारा गौड़ीय मठ श्रवण कीर्तन प्रधान है और बाकी जो है ना वो लोग स्मरण पंथी हैं, तो वो लोग उनको मुनि बनाए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने